एक नए अध्याय जिसका शीर्षक है सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, इसका रिकॉर्डिंग अब हम करने जा रहे हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम निम्न रूप से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान या प्रकार, सामाजिक परिवर्तन के कारक, सामाजिक परिवर्तन से संबंध कुछ अवधारणाएं जैसे उद्विकास, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन एवं क्रांति इत्यादि की चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। प्रत्येक समाज में चाहे अनचाहे परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो परिवर्तन से अछूता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही चिंतकों ने अपनी कृतियों में सामाजिक परिवर्तन को चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बनाए रखा है। चूंकि परिवर्तन समाज का एक शाश्वत नियम है, अतः विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने इस विषय पर कुछ ज्यादा ही प्रकाश डाला है। पर परिवर्तन की प्रक्रिया पर सिलसिलेवार ढंग से चिंतन की शुरुआत 19वीं सदी में ही हुई। सामाजिक वैज्ञानिकों में सबसे पहले इस विषय पर ध्यान संभवतः ब्रिटिश इतिहासकार हेनरी समनर मेन का गया, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंशियंट लॉ 1861 में बताया कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ता है। उनके समकालीन मानवशास्त्री एलिच मॉर्गन का विचार भी वैसा ही था। परिवर्तन की शाश्वत प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए मकीवर एवं पेज ने स्पष्टतः कहा है, द सोशल स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू इंसेंस्ड चेंज, ग्रोइंग, डिकेइंग, फाइंडिंग रिन्यूअल, accommodating itself to extremely variant conditions and suffering vast modification in the course of time. सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक तथा बाहरी या संरचनात्मक दोनों पक्षों में हो सकता है। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, और किसी सामाजिक अंग जैसे परिवार, वर्ग, जातीय हैसियत, समूहों के स्वरूपों एवं आधारों में परिवर्तन परिलक्षित हो तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि समाज के जो बुनियादी सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे परिवार, वर्ग, राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं सदैव मौजूद रहती हैं। वे समाज के अस्थायी तत्व हैं। जो परिवर्तन होता है वह इसके बाह्य स्वरूप तथा आंतरिक सार वस्तु में होता है। व्यापक दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन एवं सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है। चूंकि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है, मध्यकालीन समाज प्राचीन काल से और आधुनिक समाज मध्यकालीन समाज से तुलनात्मक रूप से विश्व स्तर पर काफी भिन्न है। यह बात दूसरी है कि सामाजिक परिवर्तन की गति कभी भी एक समान नहीं रही, पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कामोवेश हर काल में चलती रहती है। एंथनी गिडेंस का कहना है कि लगभग 18वीं सदी से सामाजिक परिवर्तन की गति मानव के इतिहास में सापेक्षिक रूप में सबसे तेज रही है और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक परिवर्तन की गति कुछ और भी ज़्यादा तेज हो गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरक्की ने सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसा लैंडिस के साथ साथ अन्य कई विद्वानों का भी मानना है। सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रारंभ से लेकर आज तक का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। अगस्त कॉम्ट एवं 19वीं सदी के अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों में इतनी अधिक रुचि दिखाई कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक काल से ही सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे सिद्धांत आ गए। उन सभी सिद्धांतों में ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म एवं उद्विकाशीय सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी सबसे अधिक लोकप्रिय रहे हैं। आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के प्रवर्तक मुख्य रूप से इन्हीं दो संप्रदायों में कहीं ना कहीं रखे जाते हैं। एलिम जिटलिन ने बताया है कि द स्टडी ऑफ सोशल चेंज इज कंसर्न विद द प्रोसेसेस थ्रू विच सोसाइटीज एंड कल्चर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। इनके इस विचार से ऐसा लगता है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से तीन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। पहला, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। दूसरा, संस्कृति में परिवर्तन। और तीसरा, परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर विचार करेंगे। आर एम मकीवर एवं सी एच पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। इन्हीं के शब्दों में, आवर डायरेक्ट कंसर्न एज सोशियोलॉजिस्ट इज विथ सोशल रिलेशनशिप। इट इज द चेंज इन दिस रिलेशनशिप विच अलोन वी शैल रिगार्ड एज सोशल चेंज। मकीवर एंड पेस 1985। के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। उनके शब्दों में, बाय सोशल चेंज इज मेंट ओनली सच अल्टरनेशन एज ऑकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन डैट इज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। किंग्सले डेविस 1949। एच एम जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन को बहुत ही संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण शब्दों में स्पष्ट करते हुए बताया है कि मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। उनके ही शब्दों में, इन इट्स बेसिक सेंस देन सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। जॉनसन की तरह गिडेंस ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था में परिवर्तन से है। ऊपर की परिभाषाओं के संबंध में यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। विचलन का अर्थ यहाँ खराब या असामाजिक नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यह विचलन स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप में हो सकता है। परिवर्तन या तो समाज के समस्त ढांचे में आ सकता है अथवा समाज के किसी विशेष पक्ष तक ही सीमित हो सकता है। परिवर्तन एक सार्वकालिक घटना है। यह किसी न किसी रूप में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, इस प्रश्न पर समाजशास्त्री अभी तक एकमत नहीं है। इसलिए परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण किंतु जटिल प्रक्रिया का अर्थ आज भी विवाद का एक विषय है। किसी भी समाज में परिवर्तन की क्या गति होगी, यह उस समाज में विद्यमान परिवर्तन के कारणों तथा उन कारणों का समाज में सापेक्षिक महत्व क्या है, इस पर निर्भर करता है। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यहाँ इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा अपेक्षित है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। ऊपर वर्णित परिभाषाओं एवं विचारों को और भी ज्यादा स्पष्ट करने के लिए सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर विचार करना जरूरी है, जो इस प्रकार है। पहला, सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नजर नहीं आता जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो या स्थिर है। यह संभव है कि परिवर्तन की रफ्तार कभी धीमी और कभी तीव्र हो, लेकिन परिवर्तन समाज में चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप होते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग, समायोजन, संघर्ष या प्रतियोगिता की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिनसे सामाजिक परिवर्तन विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। परिवर्तन कभी एक रेखीय तो कभी बहुरेखीय होता है। उसी तरह परिवर्तन कभी समस्यामूलक होता है तो कभी कल्याणकारी भी होता है। परिवर्तन कभी चक्रीय होता है तो कभी उद्विकासीय। कभी कभी सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारी भी हो सकता है। परिवर्तन कभी अल्प अवधि के लिए होता है तो कभी दीर्घकालीन। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक होती है, यानी इरेगुलर एंड रिलेटिव होती है। समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। सामाजिक संरचना के कुछ तत्वों में परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। सामाजिक संरचना समाज के सभी अंग समान रूप से गतिशील नहीं होते हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शहरी समुदाय में परिवर्तन ज्यादा तेज गति से होता है, उसी प्रकार दुनिया के सभी समाजों में परिवर्तन समान रूप से नहीं होता है। किसी समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है तो किसी में तेज। इसीलिए कहा जाता है कि पश्चिमी दुनिया का समाज भारतीय समाज की तुलना में ज्यादा गतिशील रहा है। परिवर्तन के एक ही कारक का प्रभाव अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है, अर्थात परिवर्तन की प्रत्येक कारक हर समाज में समान रूप से प्रभावकारी नहीं होते हैं। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। चौथा, सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन है। इस कथन का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन का नाता किसी विशेष व्यक्ति या समूह के विशेष भाग तक नहीं होता है। वे ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहे जाते हैं जिनका प्रभाव समस्त समाज में अनुभव किया जाता है। संक्षेप में, सामाजिक परिवर्तन की धारणा व्यक्तिक नहीं वरन सामाजिक है। यह विचार थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है, पर अधिकांश समाजशास्त्री इस बात को मानते हैं। पांचवा, सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक आकस्मिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के निश्चित स्वरूप की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत में समाजवाद के उत्थान की भविष्यवाणी की थी, लेकिन यह परिवर्तन अब तक साकार नहीं हो पाया है और नहीं होने की संभावना है। इसी तरह हम सामाजिक संबंधों, विचारों, मनोवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों में परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत, इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ सोशल चेंज। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन के मुख्य तीन स्रोत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, आविष्कार यानी इन्वेंशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आज विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति या समाज होगा जिसका जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित न हुआ हो। मानव समाज में जितने भी परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों का मुख्य स्रोत भौतिक जगत के आविष्कार रहे हैं। दूसरा, खोज यानी डिस्कवरी। मनुष्य ने अपने ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है। जैसे शरीर में रक्त संचालन बहुत सारी बीमारियों के कारण, खनिजों, खाद्य पदार्थों, पृथ्वी गोल है एवं सूर्य की परिक्रमा करती है आदि हजारों किस्म के तथ्यों को मानव ने खोजा है, जिनसे उनके भौतिक एवं अभौतिक जीवन में काफी परिवर्तन आया। मनुष्य एक खोजी प्रवृत्ति का जीव है और वह आज भी नई नई खोजों में लगा है। इन खोजों की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, प्रसार डिफ्यूजन। सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का मुख्य योगदान रहा है। पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन एवं भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही रहा है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। यही कारण है कि आज हम एक विश्व यानी वन वर्ल्ड या विश्वव्यापी ग्राम यानी ग्लोबल विलेज जैसी अवधारणाओं की बातें करने लगे हैं। चौथा, आंतरिक विभेदीकरण यानी इंटरनल डिफरेंशिएशन। जब हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन का एक चौथा स्रोत भी संभव है, वह है आंतरिक विभेदीकरण। इस तत्व की पुष्टि उद्विकाशीय सिद्धांत यानी इवोल्यूशनरी थ्योरी के प्रवर्तकों के विचारों से होती है। उन लोगों का मानना है कि समाज में परिवर्तन समाज के स्वाभाविक उद्विकाशीय प्रक्रिया से ही संभव होता है। हर एक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे विशेष स्थिति में परिवर्तित होता रहता है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों जैसे स्पेंसर, हॉबहाउस, डर्कहाइम एवं बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने अपने उद्विकाशीय सिद्धांत में स्वतः चलने वाली आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया पर काफी बल दिया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया में खोज एवं आविष्कार का अपना एक अलग महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, सोशल एंड कल्चरल चेंज। सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन एक ही चीज है या अलग अलग है, इस विषय पर थोड़ा विवाद रहा है, अतः इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी मानव शास्त्री एवं समाजशास्त्री हैं जो सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही मानते हैं, जैसे जिलीन तथा मोलिनोफ्स्की। जिलीन एवं जिलीन जीवन के स्वीकृत तरीकों में बदलाव को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। मोलिनोफ्स्की ने जीवन के स्वीकृत तरीकों को ही संस्कृति की संज्ञा दी है, लेकिन यदि हम ठीक से विचार करें तो पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी अंतर है। शाब्दिक दृष्टि से संस्कृति समाज से अधिक व्यापक अर्थ रखता है, अतः सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन से है। इसके अंतर्गत धर्म, ज्ञान, कला, विश्वास, प्रथा, कानून, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, वास्तुकला, आदतें आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन सम्मिलित है। जब हम किंग्सली डेविस के सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का मात्र एक भाग है। मकीवर एवं पेज भी सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का संबंध मात्र सामाजिक संबंधों में आए हुए परिवर्तन से है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला, सामाजिक परिवर्तन मात्र सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथा, कानून आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन हैं। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संरचना में परिवर्तन का बोध होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन से संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन का बोध होता है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन चेतन एवं अचेतन दोनों परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन प्रायः सचेत प्रयत्नों से घटित होता है। चौथा, सामाजिक परिवर्तन की गति काफ़ी तीव्र भी हो सकती है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत कम तीव्र होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तेजी से भी हो सकता है, जबकि धर्म, विश्वास, जीवन के मूल्यों आदि में परिवर्तन धीमी रफ्तार से होता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों भिन्न हैं। वैसे दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध भी है। एक दूसरे पर परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से अवश्य पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों अलग अलग हैं या एक ही, यह अभी तक एक विवाद का विषय बना हुआ है। यहाँ अंतिम रूप से कुछ कहना काफ़ी कठिन है, क्योंकि संस्कृति एवं समाज की कई ऐसी निश्चित समाज की कोई ऐसी निश्चित परिभाषा नहीं है जिसे सभी लोग स्वीकार करें। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान या प्रकार, पैटर्न्स और काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं होता है, अतः हमें सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप के संदर्भ में उसके प्रतिमानों यानी पैटर्न्स या प्रकार यानी काइंड्स पर विचार करना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्दों में काफ़ी भेद है, पर विषय वस्तु की दृष्टि से समानता है। वे सभी एक ही किस्म की विषय वस्तु के द्योतक हैं। निम्न विवरण से इस तथ्य की पुष्टि की जाएगी हो जाएगी सामाजिक परिवर्तन के अनेक प्रतिरूप यानी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। मकेवर एवं पेच ने 1985 में सामाजिक प्रतिरूप के मुख्य तीन स्वरूपों की चर्चा की है, जो इस प्रकार से है। पहला, सामाजिक परिवर्तन कभी कभी क्रमबद्ध तरीके से एक ही दिशा में निरंतर चलता रहता है, भले ही परिवर्तन का आरंभ एकाएक ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, हम विभिन्न आविष्कारों के पश्चात परिवर्तन के क्रमों की चर्चा कर सकते हैं। विज्ञान के अंतर्गत परिवर्तन की प्रकृति एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की होती है, इसलिए ऐसे परिवर्तन को हम रेखीय यानी लीनियर परिवर्तन कहते हैं। अधिकांश उद्विकासीय समाजशास्त्री यानी इवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट एक रेखीय सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करते हैं। कुछ सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन की प्रकृति ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की होती है, इसलिए इसे उतार चढ़ाव परिवर्तन यानी फ्लक्चुएटिंग चेंज के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय सांस्कृतिक परिवर्तन की चर्चा कर सकते हैं। पहले भारत के लोग अध्यात्मवाद यानी स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ रहे थे, जबकि आज वे इसके विपरीत भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। पहले का सामाजिक मूल्य त्याग पर जोर देता था, जबकि आज का सामाजिक मूल्य भोग पर, संचय पर जोर देता है। इस प्रतिरूप के अंतर्गत यह निश्चित नहीं होता है कि परिवर्तन कब और किस दिशा में उन्मुख होगा। तीसरा, परिवर्तन के तृतीय प्रतिरूप को तरंगीय परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तन के अंतर्गत उतार चढ़ावदार परिवर्तन में परिवर्तन की दिशा एक सीमा के बाद विपरीत दिशा में उन्मुख हो जाती है। इसमें लहरों यानी वेव्स की भांति एक के बाद दूसरा परिवर्तन आता है। ऐसा कहना मुश्किल होता है कि दूसरी लहर पहली लहर के विपरीत है। हम यह भी कहने की स्थिति में नहीं होते हैं कि दूसरा परिवर्तन पहले की तुलना में उन्नति या औन्नति का सूचक है। इस प्रतिरूप का सटीक उदाहरण है फैशन। हर समाज में नए नए फैशन की लहरें आती रहती हैं। हर फैशन में लोगों को कुछ न कुछ नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तनों में उत्थान या पतन और प्रगति की चर्चा फिजूल है। टीबी बॉटमोर ने सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, इसलिए कि 20वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा तेज हो गई है और विश्व के सभी देशों में सामाजिक परिवर्तन की तीव्रता एवं उसका स्वरूप एक जैसा नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की गति के संबंध में विकसित एवं विकासशील देशों के बीच काफ़ी फर्क है। सामाजिक परिवर्तन की गति में असमानता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। वर्गीकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने में भी सहायता मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ही समाज में विभिन्न कालों में विभिन्न गतियों से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। बॉटमोर ने सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर तो दिया है, लेकिन उन्होंने स्वयं कोई वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने वर्गीकरण के चार आधारों की बात तो कही है, पर उन आधारों पर विभिन्न किस्म के परिवर्तन के नामकरण की कोशिश नहीं की है। बॉटमोर ने सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण के चार आधारों का वर्गीकरण किया है, वे इस प्रकार हैं। पहला, परिवर्तन के स्रोतों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर सामाजिक परिवर्तन के को दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक परिवर्तन यानी एंडोजेनियस एवं बाह्य परिवर्तन एक्सोजेनियस। उन्होंने बताया है कि अविकसित समाज यानी अंडर डेवलप्ड सोसाइटी में बाह्य परिवर्तन की प्रधानता होती है, जबकि विकसित समाज में आंतरिक परिवर्तन की प्रधानता होती है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि वर्गीकरण का आधार यह भी हो सकता है कि पहले समाज के किसी आयाम में परिवर्तन आता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का दूसरा आधार यह भी हो सकता है कि बृहद पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन होने की पूर्वावस्था क्या थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि औद्योगिकीकरण के द्वारा विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। उद्योगीकरण के द्वारा जो परिवर्तन भारतीय और चीनी समाज में आया है, वही परिवर्तन अफ्रीका के आदिम जातियों में नहीं आया है। उद्योगीकरण के चलते सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार कहीं धीमी तो कहीं तेज होगी। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप भी अलग अलग होगा। परिवर्तन की गति के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की गति कभी तेज और कभी धीमी देखने को मिलती है। यदि सामाजिक परिवर्तन का आधार कोई जन आंदोलन या क्रांति है, तो सिर्फ परिवर्तन की गति ही तेज न होगी, बल्कि उसका स्वरूप भी बुनियादी होगा। चौथा, अंत में बॉटमोर ने बताया है कि वर्गीकरण का आधार यह भी हो सकता है कि परिवर्तन योजनाबद्ध है या आकस्मिक। योजनाबद्ध परिवर्तन यानी प्लांट चेंज का स्वरूप आकस्मिक परिवर्तन से भिन्न होता है। आज समाज में अधिकांश परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से आ रहे हैं, जबकि आदिकाल में सभी परिवर्तन आकस्मिक हुआ करते थे। आकस्मिक परिवर्तन की गति योजनाबद्ध परिवर्तन की तुलना में साधारणतया बहुत ही धीमी होती है।